दिनभर तारीख 19 सितंबर दिन शनिवार में हूं विनीत खरे। शरणार्थी संकट से निपटने पर यूरोपीय देशों के बीच तनाव। बिहार रैली में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर बरसे। बिलासपुर में सुरंग में फंसे युवकों को निकालने की कोशिशें जारी। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के 46 साल बाद पाकिस्तानी पायलट ने भारतीय पायलट की बेटी से अफसोस जताया।
मैंने कंफर्म किया कि जी आप वाकई इसको शूट करना चाहते हैं, तो कहने लगे हाँ इसको शूट कर दीजिए आप। तो मैंने उसके पीछे आके इसको निशाना लिया और निशाना लेके तो मैंने उसको शूट किया।
क्या थी पूरी कहानी सुनिएगा कार्यक्रम में, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री जोरान मिलानोविच ने कहा है कि उनका देश शरणार्थियों को हंगरी की तरफ भेजता रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक हंगरी से ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन क्रोएशिया पूरी कोशिश करेगा कि हंगरी शरणार्थियों को स्वीकार कर ले। उधर हंगरी ने क्रोएशिया पर आरोप लगाया है कि वह शरणार्थियों का ब्यौरा दर्ज किए बगैर उन्हें हंगरी की तरफ भेजकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है। बुधवार से क्रोएशिया में 20,000 से भी ज्यादा प्रवासी और शरणार्थी पहुंच चुके हैं। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने सीरिया के संकट को खत्म करने के लिए तुरंत बातचीत करने की जरूरत है, ऐसा कहा है। जॉन कैरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान और रूस सीरिया के राष्ट्रपति को बातचीत के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि राष्ट्रपति असद को तुरंत इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि अंत में उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। कैरी ने यह भी कहा कि आईएस से लड़ने के लिए अमरीका रूस की मदद का स्वागत करेगा। नेपाल मंत्रिमंडल ने सरोगेसी यानी किराए की कोख के चलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल जब से नेपाल की सरकार ने विदेशी परिवारों के लिए सरोगेसी को वैध बनाया था, तब से यहां पर यह चलन बहुत जोर पकड़ रहा है। लेकिन खबर है कि इस प्रतिबंध के बावजूद निजी अस्पताल सरोगेट माओं को प्रवेश दे रहे हैं अगर वो कहें कि वो भारतीय हैं। जापान की संसद ने एक विवादास्पद विधेयक को कानून की शक्ल देने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत जापान की सेना विदेश में भी जाकर लड़ सकेगी। चीन ने इस सिलसिले में जापान की कड़ी निंदा की है। एक संवाददाता सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हॉन्ग लाई ने टोक्यो से अपील की कि वह इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा न करे। जापान के एशियाई पड़ोसी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सैन्य और सुरक्षा क्षेत्र में जापान के कदमों को ध्यान से देख रहे हैं। इसकी ऐतिहासिक वजहें हैं। हमने ये भी नोटिस किया है कि जापान में भी इस नए सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आवाजें मजबूत हो रही हैं। हम जापान से अपील करते हैं कि वो जापानी लोगों की न्याय की गुहार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवाज़ भी सुने और शांतिपूर्ण विकास के मार्ग पर ही चलता रहे। ये थे हॉन्ग लाई के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सरकारी वायुसेना के विमानों ने उत्तरी इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के कैंपों में हमला किया है, जिसमें कम से कम 55 चरमपंथी मारे गए हैं। तुर्की की सेना का कहना है कि एक अलग कार्रवाई में देश के दक्षिण पूर्व में चरमपंथी गुट पीकेके के ठिकानों पर हमलों के दौरान 30 से ज्यादा चरमपंथी मारे गए हैं। जुलाई में पीकेके के एक आत्मघाती हमले के बाद तुर्की लगातार पीकेके ठिकानों पर हमला कर रहा है। खबर है कि सीरिया में अलकायदा से जुड़े सीरिया के एक संगठन ने सरकारी सेना के जवानों के एक समूह को जान से मार दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिनभर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। यूरोप के देशों के बीच शरणार्थी संकट से निपटने को लेकर तनाव बढ़ रहा है। क्रोएशिया ने जब शरणार्थियों को बिना रजिस्टर किए हंगरी भेजना शुरू कर दिया, तो हंगरी ने क्रोएशिया पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। बीबीसी से बातचीत में क्रोएशिया के विदेश मंत्री वेस्ना पुसिच ने कहा कि संकट से निपटने के लिए यूरोप को संयुक्त नीति अपनानी होगी। यूरोपीय यूनियन क्या है? हम यूरोपीय यूनियन है। हमें बैठकर फैसला करना होगा कि हम क्या करें और इससे कैसे निपटें। ये थे वेस्ना पुसिच के शब्द। बीबीसी संवाददाता जावेद सुमरो इस वक्त जर्मनी के शहर म्यूनिक में हैं। मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की और उनसे पूछा कि यूरोपीय यूनियन के सामने क्या चुनौतियां हैं।
देखें, यूरोपीय देश जो है उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि जो रिफ्यूजीज की तादाद है, जो नंबर है, वो इतना ज्यादा है कि उसको किसी भी मुल्क में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो करना लगभग नामुमकिन हो रहा है। क्रोएशिया ने अपनी सरहदें बंद कर दी, अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं, उसके साथ साथ जो हंगरी है उसने अपनी सीमा बंद कर दी है रिफ्यूजीज के लिए। तो अभी हमने बात की है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से और जो रिफ्यूजीज के लिए यूएन की ऑर्गेनाइजेशन से काम करती हैं, वो बता रही हैं कि वहाँ पे हजारों लोग रोज आ रहे हैं और वहाँ पे एक जैसे बहुत रेला लग गया है लोगों का। तो इतने सारे लोगों को कहीं पर भी रखना और उनको सेटल करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है यूरोपीय देशों के लिए। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों का बनेगा क्या, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकते, वो उनको यहीं पे होना है और कोई ना कोई सारे यूरोपीय जो देश हैं उनके जो सरबराह हैं, जो हेड्स हैं, जो नेता हैं, उनको सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि इनका यूरोप भर में कैसे इनका हल किया जाए मसला। किसी एक देश के बस की बात नहीं।
बहुत सारे ऐसे देशों से भी लोग पहुंच रहे हैं जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, जहां पर सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं है जैसा कि हम सीरिया जैसे देशों में देख रहे हैं। पाकिस्तान से लोग पहुंच रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग पहुंच रहे हैं। इस स्थिति से, इस सिचुएशन से कैसे वहां पर अथॉरिटीज निपट रहे हैं?
देखिए, ये बहुत बड़ा एक मसला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आपने खुद कहा कि अफगानिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं और पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद में है। आज भी हम बहुत सारे ऐसे नौजवानों से मिले हैं जो अकेले हैं, जिनकी कोई फैमिली नहीं है और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं, और उनमें से जिससे भी आप बात करें तो वो सबको यही कहता है कि हालात खराब है हमारे मुल्क में और हम यहाँ पे बेहतर जिंदगी के लिए आए हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनकी जिंदगियों को कोई इमीडिएट खतरा जैसे होता है जो असाइलम के लिए बहुत जरूरी है, वो नहीं है। तो बहुत बड़ी तादाद है जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स की है, लेकिन मसला ये है कि अब वो यहाँ आ गए हैं। अब उन वो कहते हैं कि जी हम, वो तो ये भी नहीं कहते कि हम, हमारा देश कौन सा है। वो अपने पासपोर्ट्स फाड़ देते हैं, अपने कागजात खत्म कर देते हैं। तो लेकिन उनको अब निकालना बड़ा मुश्किल है। और ये जानना कि कौन सीरिया से है, कौन अफगानिस्तान से, कौन बांग्लादेश से, कौन पाकिस्तान से।
ये थे जर्मनी के शहर म्यूनिक से हमारे साथी जावेद सुमरो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार के पश्चिम चंपारण के रामनगर में रैली की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ सूट बूट वालों से मिलते हैं। इस रैली में हमारे साथी मनीष शांडिल भी मौजूद थे, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
मौका तो था भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले समरसता समागम का, लेकिन दरअसल इसी कार्यक्रम के बहाने राहुल गांधी ने आज बिहार चुनाव में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। राहुल ने अपने भाषण के दौरान कई बार सूट बूट की सरकार का जिक्र किया और लगातार अपने भाषण में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि पिछले एक सालों के दौरान सरकार अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है, वो किसानों, युवाओं, किसी के भी हित में काम नहीं कर रही है।
एक तरफ गांधी जी जो सूट उतार रहे हैं, शर्ट उतार रहे हैं, यहाँ तीन महीने के लिए आके किसानों से पूछ रहे हैं भैया क्या बात है बताओ हमें तो हम आपकी लड़ाई लड़ सके, और दूसरी तरफ मोदी जी जो चाय की दुकान में, पता नहीं सच है या नहीं मगर लोग कहते हैं जो चाय की दुकान में काम करते थे, आज वो ना गरीब से मिलते हैं, ना मजदूर से मिलते हैं, ना कमजोर से मिलते हैं, सिर्फ सूट बूट वालों से मिलते हैं। 15 लाख किसी को मिला, महंगाई कम हुई, 2 करोड़ रोजगार मिले।
राहुल की आज की रैली में न नीतीश आए न लालू। जदयू की ओर से उनके राष्ट्रीय महासचिव और सांसद केसी त्यागी ने भाग लिया, जबकि राजद की ओर से लालू यादव की ओर से उनके छोटे बेटे तेजस्व यादव ने राहुल के साथ मंच साझा किया। तेजस्व ने भी लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को निशाने पर लिया और बाकी आरोपों के साथ साथ उन्हें ठग तक कह डाला। जिस इलाके में कांग्रेस ने आज चुनावी रैली की है वहाँ अभी भी कांग्रेस का वजूद मौजूद है। पिछले 25 सालों से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कांग्रेस इस इलाके में मुकाबले में रहती है। अब राहुल की इस रैली का कितना असर इस इलाके और बिहार की चुनाव पर पड़ेगा, इसका तो पता 8 नवंबर को पता चल पाएगा, जिस दिन मतगणना होनी है। मनीष शांडिल्य, BBC रामनगर।
और मनीष शांडिल्य ने इस रैली में आए कुछ लोगों से भी बात की।
मेरा नाम सत्येंद्र सिंह सतवादी। बहुत अपेक्षा है, बहुत खुशी है कि हम युवा हैं, हमारे भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये हमारा सेमीफाइनल है 2015, मेरा फाइनल 2019 जो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
हम तो यही कहेंगे गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हार जीत तो लगा ही हुआ है, इंशाल्लाह फिर हमारी कांग्रेस जो है कि सत्ता में आएगी और हम लोग का पूरा समर्थन जो है कि कांग्रेस के साथी है, कांग्रेस के साथी रहे।
चुनावी दंगल है, हार जीत तो अपना भाग किस्मत का होता है, लेकिन इतना मेरा हौसला बुलंद है बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और 2019 में हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
ये थे रैली में पहुंचे कुछ कांग्रेस समर्थक। उधर महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर आज घोषणा हुई है। नीरज सहाय ने पटना से थोड़ी देर पहले हमें ये जानकारी दी।
आज शाम में महागठबंधन के तीनों घटक दलों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके तहत कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी इसकी लिस्ट साझा की गई। जारी लिस्ट के अनुसार 101 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड 101 सीट पर और कांग्रेस 41 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लिस्ट जो जारी की गई है उसमें यह कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर यह है कि उम्मीदवारों का नाम सार्वजनिक किसी पार्टी ने नहीं किया अभी।
तो ये तो पहले से ही बात तय थी कि इतनी सीटों पर चुनाव ये पार्टियां लड़ेंगी, तो इसमें नया क्या है? इसमें नया तो कुछ हुआ नहीं।
पहले ये था कि जैसे 3 सीटें एनसीपी के भी खाते में थी जो कि अब तीसरे मोर्चे में चला गया है, सपा भी जुड़ने की बात हो रही थी लेकिन वो भी तीसरे मोर्चे में चला गया है, तो एक दो सीट का अंतर हुआ है। जैसे पहले 100 ही सीट थी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल को, जो कि बढ़कर अब 101 हो गया है। कांग्रेस को भी इसके चलते एक आध दो सीट का फायदा हुआ है।
अगर किसी सीट पर ये उम्मीदवार तय नहीं हुए तो इसका क्या मतलब लगाया जाए कि क्या प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं है?
नहीं, प्रत्याशियों के नाम पर सहमति नहीं है ऐसी बात नहीं है। चर्चा इस बात की है कि अंतर विरोध का शायद कोई डर है, जैसा कि यहाँ जानकार बता रहे हैं। अभी देखें तो आज ही दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के ही एक वर्तमान विधायक भाई दिनेश कल से ही भूख हड़ताल पर प्रदेश कार्यालय के बाहर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टियों को ये लग रहा है कि अगर नाम पहले जाहिर कर दिया जाता है तो हो सकता है कि अंतर विरोध हो।
पटना से ये थे नीरज सहाय। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हफ्ते भर से एक सुरंग में फंसे 3 युवकों में से 2 से संपर्क हो गया है। स्थानीय प्रशासन के लोगों ने उनसे बात भी की है। इन 2 युवकों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। शिमला से पत्रकार अश्विनी कुमार इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अश्विनी, बता पाएंगी जो 2 युवक हैं कब तक निकल जाने की इनकी आशा है?
देखिए, हम लगभग 10 किलोमीटर उस स्थान से बैठे हुए हैं, अभी वहां से होके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा समाचार कभी भी आ सकता है अगले कुछ घंटों में। जो प्रयास अभी तक दिन में जारी हुए हैं उनके द्वारा एक ड्रिलिंग मशीन के द्वारा एक रिक अंदर डाली गई टनल के ऊपर से, वो लगभग 39 मीटर नीचे जाके वो टनल को टच कर गई है। अब उनकी जो ग्रिल्स वगैरह काटेंगे और उसके बाद एनडीआरएफ की एक कंपनी तैयार बैठी है, वो अंदर जाएंगे और उन वर्करों को बाहर निकालेंगे। ये ऑपरेशन शायद रात को या कल सुबह हो सकता है
जी। और ये जो तीसरा व्यक्ति है इसके बारे में कुछ पता चल पाया है या कोई संपर्क उनसे हो पाया हो?
जी, जो उनके परिवार के लोग भी वहां बैठे हैं उनको भी अभी तक कोई इसका समाचार नहीं है। अधिकारी इसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें अंदेशा है, जैसे हम कई दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगता है कि जब वो मलबा गिरा है इन ऊपर जो वर्करों के ऊपर, शायद उसमें उसकी चपेट में ना आ गए हो, बट अभी भी कुछ कहना संभव नहीं है। अभी संपर्क सिर्फ 2 जो मजदूर हैं उनसे हुआ है, उनसे लगातार बातचीत हो रही है, उनको खाने की सामग्री दी जा रही है, उनको मेवे दिए गए हैं, पानी दिया गया है और उनकी सेहत के बारे में जाना गया, बहुत अच्छी सेहत में है।
शिमला से पत्रकार अश्विनी कुमार, शुक्रिया आपका।
बीबीसी इंडिया पोल।
लखनऊ में सचिवालय चपरासियों के कुल 368 पदों के लिए करीब 23 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए। आवेदन करने वालों में पीएचडी से लेकर बीटेक डिग्री वाले भी शामिल हैं। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लगातार युवाओं को नौकरियां देने के वायदे करती रही हैं, लेकिन नौकरियों की कमी बरकरार है। लाखों करोड़ों नौकरियां पैदा करने के वायदे करने वाली पार्टियां आखिर क्या कर रही हैं? 19 सितंबर के इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। इस बार भी इंडिया बोल 7:30 बजे नहीं बल्कि 9:30 बजे घटना चक्र के वक्त होगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
1965 की लड़ाई के अंतिम चरण में एक पाकिस्तानी पायलट ने भुज के इलाके में भारत के असैनिक विमान को मार गिराया था, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राव मेहता के अलावा 7 अन्य व्यक्ति मारे गए थे। उस घटना के 46 साल बाद पाकिस्तानी पायलट कैस हुसैन ने भारतीय पायलट जहांगीर इंजीनियर की बेटी से अफसोस प्रकट किया। क्या था पूरा मामला, बता रहे हैं रेहान फजल 1965 सीरीज पर, युद्ध की सीरीज पर हमारी 19वीं कड़ी में।
19 सितंबर 1965 की सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता बहुत तड़के ही उठ गए थे। 10 बजे उन्होंने एनसीसी की एक रैली को संबोधित किया, खाना खाने के लिए घर लौटे और दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो अपनी पत्नी सरोजबेन, 3 सहयोगियों और गुजरात समाचार के एक संवाददाता के साथ हवाई अड्डे के टरमैक पर पहुंचे, भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट जहांगीर इंजीनियर ने उन्हें सैल्यूट किया। जैसे ही सब लोग विमान में बैठे, इंजीनियर ने अपना बीच क्राफ्ट विमान स्टार्ट किया। उन्हें 400 किलोमीटर दूर द्वारका के पास मीठापुर जाना था, जहां बलवंत राय मेहता को एक रैली को संबोधित करना था। उधर 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के मौरीपुर एयरबेस पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुहारी और फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन से कहा गया कि भुज के पास रडार के संपर्क में आए एक विमान को चेक करें। कैस हुसैन ने बीबीसी को बताया
कि मैं उस वक्त जहाज में बैठा हुआ था मौरीपुर में, तो जब वो सायरन बजा तो मैंने जहाज को स्टार्ट किया। जब मैंने बदीन स्टेशन से, जो हमारा रेडार स्टेशन है, उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 20,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास कीजिए और वहां से आप इस डायरेक्शन में आपने जाना है, और उसी हाइट पे मैंने इंडिया का बॉर्डर भी क्रॉस किया। उसके कोई 2-3 मिनट के बाद उन्होंने मुझे डिसेंट करने का हुक्म दिया, तो मैं डिसेंट करना शुरू किया। तो अल्टीमेटली कोई 3,000 फुट की बुलंदी पे जाते हुए तो ये जहाज जो था ये भोज की तरफ जा रहा था। तो 3,000 फुट की बुलंदी पे एक विलेज है, मिठाली शायद उसका नाम है, उसके ऊपर मैंने इसको इंटरसेप्ट किया। मुझे जहाज नजर आया और मैंने जब देखा कि ये सिविलियन जहाज है तो मैंने उस पर छूटते ही फायरिंग शुरू नहीं की, लेकिन मैंने रिपोर्ट किया कंट्रोलर को कि भाई ये तो सिविलियन जहाज है, और मैं इतना करीब किया उस जहाज के कि मैं उसका नंबर भी पढ़ सका, और मैंने उसको बताया कि ये विक्टर टैंगो, नंबर मुझे अब याद नहीं है क्या है, तो ये वो जहाज है और 8 सीटर है, और अब बताएं इसको क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा वेट करें। अब मैं वेट कर रहा था तो 3-4 मिनट गुजर रहे थे और मैं काफी लो हाइट पे था, 3-4,000 फुट की बुलंदी पे, तो मुझे फिक्र ये हो रही थी कि आई मे नॉट रन आउट ऑफ फ्यूल व्हाइल गोइंग बैक। 3-4 मिनट के बाद मुझे हुक्म आया कि आप इसको शूट कर दें।
कैस ने तुरंत उस विमान को शूट नहीं किया, उन्होंने कंट्रोल रूम से दोबारा इस बात की तस्दीक की कि क्या वो वास्तव में चाहते हैं कि उस विमान को गिरा दिया जाए।
मैंने कंफर्म किया कि जी आप वाकई इसको शूट करना चाहते हैं, तो कहने लगे हाँ इसको शूट कर दीजिए आप। तो मैंने उसके पीछे आके इस पर निशाना लिया और निशाना लेके तो मैंने उसको शूट किया पहली बारी में। तो जब मैंने उसको छोटा सा मैंने बर्स्ट दिया तो मैंने देखा कि उसके लेफ्ट विंग से कोई चीज उड़ी है। उसके बाद ही केप्ट फ्लाइंग। उसके बाद फिर मैं वापस आया राउंड लेके, तो मैंने उसकी स्पीड अपनी स्लो की और स्पीड स्लो करके स्पीड ब्रेक निकाल के स्पीड स्लो करके उसके पीछे आराम से बैठ के तो मैंने उसको थोड़ा सा लंबा फायर दिया। तो फिर मैंने देखा कि उसके राइट इंजन से फ्लेम्स निकले और फिर उसने नोज ओवर किया, तो ही वेंट इनटू अ 90 डिग्री स्टीप डाइव टुवर्ड्स द ग्राउंड, और कुछ अरसे के बाद वो ग्राउंड हिट हुआ और वो क्रैश किया, और मुझे पता था जहाज में बहुत बड़ा बॉल ऑफ फायर था।
कैस बताते हैं कि शूटिंग से पहले उस विमान ने उन्हें बार बार संकेत देने की कोशिश की कि वो एक असैनिक विमान है।
जब मैंने उनको इंटरसेप्ट किया तो उसके बाद उन्होंने उसी विंग्स को वैगल करना शुरू किया, जिसका मतलब ये था कि भाई हैव मर्सी ऑन मी। द रीजन बिहाइंड शूटिंग हिम वाज नॉट कि सिविलियन रेकर जो मिला उसको मार दो। मुश्किल ये थी डिसीजन लेने में कि जहाज तो सिविलियन है, लेकिन क्या ये बॉर्डर पे जो अप एंड डाउन जो फ्लाइंग कर रहे थे, क्या ये कोई तस्वीरें ले रहे थे, रेकी कर रहे थे, जिससे कि इंडिया कोई और फ्रंट खोलना चाहते हैं यहाँ पर। बलवंत राय मेहता जी का तो किसी को ख्याल भी नहीं आया कि वो और उनकी श्रीमती और उनके साथ कोई 5-6 और उनके स्टाफ के बंदे होंगे, और ना ही कोई ऐसा मीन्स था कॉन्टेक्ट करने का रेडियो पे कि पता चलता कि उसके अंदर जहाज के अंदर वाकई कौन है कौन नहीं है।
PVS जगनमोहन और समीर चोपड़ा ने अपनी किताब द इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर ऑफ 1965 में लिखा है,
नलिया के तहसीलदार को क्रैश साइट पर भेजा गया। वहां उन्हें गुजरात समाचार पत्र के एक पत्रकार का जला हुआ परिचय पत्र मिला। कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, मसलन जहाज को लड़ाई की जगह पर बिना किसी एस्कॉर्ट विमान के क्यों जाने दिया गया। क्या जहाज भारतीय वायुसेना की जानकारी के बिना वहां गया?
पाकिस्तान के उड्डयन इतिहासकार कैसर तुफैल लिखते हैं,
भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1965 और 1971 की दोनों लड़ाइयों में सैनिक कामों के लिए सिविलियन जहाजों का इस्तेमाल किया था, इसलिए हर विमान की सैनिक क्षमताओं का आकलन किया जा रहा था। सिर्फ संयुक्त राष्ट्र और रेडक्रॉस के विमानों में उनकी पहचान बड़ी बड़ी दिखाई देती है। उस समय के उड्डयन कानूनों में इस तरह की गलती न करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 1977 में कहीं जाकर इसे जिनीवा कन्वेंशन का हिस्सा बनाया गया।
उसी शाम 7 बजे के बुलेटिन में आकाशवाणी ने घोषणा की कि एक पाकिस्तानी विमान ने भारत के सिविलियन जहाज को गिरा दिया है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री सवार थे। जहाज के पायलट जहांगीर इंजीनियर का परिवार उस समय दिल्ली में रहता था। उनकी बेटी फरीदा सिंह याद करती हैं।
हम लोग दिल्ली में थे और हमारे अंकल जो थे वेस्टर्न कमांड एयरफोर्स में थे, ही वाज एयर मार्शल इंजीनियर, और उनको सब पता लगता है कि क्या क्या हो रहा है, कौन मर गया कौन गया। उसने तुरंत फ़ोन किया हेडक्वार्टर से, दिल्ली से, हमको दिल्ली में फ़ोन किया कि आपका पिताजी, सॉरी, हमारे भाई और आपका पिताजी अभी नहीं रहा। फिर आस्ते आस्ते कहानी निकल गया, पेपर्स में निकला ये वो कि सिविलियन प्लेन शॉट डाउन हो गया।
इंजीनियर के पूरे परिवार के लिए ये हादसा एक तरह से वज्रपात की तरह था। जब इस दुर्घटना के और विवरण सामने आए तो उन्हें और दुख हुआ।
डैडी ने 45 मिनट्स फ्लाई कर रहे थे टू अवॉइड द प्लेन दैट इज शैडोइंग हिम, क्योंकि वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हीरो था, वो तो खुद ही चलाता था। और उसको एक चीज समझ में आते थे, ये कि जो एक उसका एडवांटेज था, अगर यू लुक एट इट एज अ बैटल, एडवांटेज ये था कि जो छोटा प्लेन्स उसके जो पेट्रोल है वो ज़्यादा है, जो फ्यूल है वो ज़्यादा है, और इन ही नोज दैट ये शायद सेबर जेट थे, उनके कम, तो उसने अवॉइड करके ऊपर नीचे इधर उधर अवॉइड करके इतनी स्लो प्लेन में, और कैसे सैन उसको नहीं मार सकते थे, उसका पेट्रोल ख़त्म हुआ था, किसके, कैसे सैन के जो उसको आक्रमण कर रहे थे, और ही शॉट हिम डाउन और एम्प्टी टैंक लेके पाकिस्तान वापस गया। तो ये आप बोल सकते हैं कि डैडी ऑलमोस्ट मेड इट।
इसके बाद इस घटना पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। कैस हुसैन भी इस ट्रेजेडी को अपने दिल में भरे चुपचाप रहे। 46 साल बाद पाकिस्तान के एक अखबार में उड्डयन इतिहासकार कैसर तुफैल का एक लेख छपा, जिसमें उन्होंने इंजीनियर के विमान को युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति देने के लिए भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को जिम्मेदार ठहराया। तब कैस ने यह तय किया कि वो भारतीय विमान के पायलट की बेटी फरीदा सिंह से संपर्क कर इस हादसे पर अपना अफसोस प्रकट करेंगे।
हुआ ऐसे कि फरवरी 11 में मेरे कलीग हैं कैसर तुफैल ने कहा कि सर ये एक स्टोरी ऐसी है जिसका के किसी को कुछ पता नहीं है और इसका कोई आई विटनेसेस भी नहीं है सिवाय आपके अपने के, तो मैं इस पे आपका एक राइटअप करना चाहता हूँ, आपकी रिपोर्ट लेना चाहता हूँ। तो खैर कैसर तुफैल से मेरा इंटरव्यू हुआ, उसने वो फिर ये डिफेंस जर्नल पाकिस्तान में अप्रैल में वो आर्टिकल भी छपा इनका। तो उसके बाद कैसर ने मुझे कुछ रिपोर्ट्स भेजी जो कि उन्होंने जगन पिलारा सेठी से लेके, तो उनसे काफी तो कलेक्ट की थी, रिसर्च की थी। उन रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट थी आपकी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट थी, तो उसमें कहा गया कि जी जहाज लैंड कर चुका था और दो पायलट थे पाकिस्तानी, उन्होंने उसको स्ट्रैफिंग की और जमीन पे उनको ऐसे मारा गया। तो मुझे उस वक्त दुख हुआ, मैंने कहा यार कि इतने अरसे से ये जो फैमिलीज हैं इनको यही पता है कि यू नो ये इनके जो लोग थे ये इस तरह से मारे गए। तो मुझे एक इस्तराब सा हुआ कि मैंने कहा कि यार ये आई शुड एटलीस्ट फाइंड दीज फैमिलीज और सम ऑफ देम और उनसे मैं असल वाकया बताऊं कि असल वाकया हुआ क्या था। फिर मैंने 5 या 6 अगस्त 2011 तो मैंने उनको एक ईमेल लिखी जिसमें कि मैंने सारा किस्सा बयान किया और मेरे उसमें लफ्ज ये थी कि मैंने कहा कि देखें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन एनी वे इज अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर एंड आई एम नो एक्सेप्शन टू इट एंड आई फील सॉरी फॉर यू एंड द अदर फैमिलीज हु लॉस्ट देयर डियर वंस। मैंने ये भी लिखा कि मैंने कहा अगर मुझे कभी मौका मिला मैं ताला खुद भी हाजिर होकर आपसे उसकी कंडोलेंस करूंगा। तो माफी मांगने का तो भाई उसमें कोई उसमें वो है ही नहीं, क्योंकि जब एक फाइटर पायलट अंडर ऑर्डर्स होता है तो दो सूरतें होती हैं, अगर वो मिस करता है तो वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है कि क्यों मिस किया, व्हाई वर यू नॉट सो प्रोफिशिएंट, और अगर वो जान के नहीं मारता तो ये कोर्ट मार्शल ऑफेंस है कि यू डिसोबेड द ऑर्डर्स और आई वाज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीस टू एलिगेशन।
उधर फरीदा सिंह को पता चला कि वो शख्स जिसने उनके पिता के विमान को गिराया था उनसे संपर्क करना चाह रहा है।
कुछ महीने पहले एक दो जो कनेक्शन एयरफोर्स में हमारे एयरफोर्स के उसने बताया हमको, लिखा कि एक है जो आपको ढूंढ रहा है। तो मैंने बोला कौन है, तो उसने बोला है ये है वो इंसिडेंट हुआ जो था वो उसका पायलट। तो मेरे को झटका मिला बिकॉज यही बात है कि इट मे बी 46 इयर्स बट वो मेमोरीज था है? तो मैंने हेजिटेट किया, क्या सुनना है मेरे को, मेरे को पिताजी के डेथ के बारे में नहीं सुनना है, अगर आपके दिल में है तो आप प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर। तो मैंने बोला है डैडी के लिए मैं करती, लेकिन मैं तो रेगुलरली ईमेल नहीं खोलते हैं उन दिनों में। फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन किया, बताया कि फरीदा एक इंडियन एक्सप्रेस में आपके नाम है। तो मैंने बोला क्यों, बोला किसी ने पब्लिश किया वो लेटर। आई सेड आ गया लेटर, तो मैंने तुरंत जाके ईमेल देखा और मैंने उसी टाइम बैठ के उसको, मैंने एक मिनट हेजिटेट नहीं किया क्योंकि किसी ने लिखा है और मैं रिस्पॉन्ड ना करूं।
फरीदा ने तुरंत कैश के ईमेल का जवाब दिया।
उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके बाद मैंने कहा जी कि आई मूव्ड वन स्टेप एंड शी मूव्ड मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड यू नो।
फरीदा कहती हैं कि उन्होंने कैश के ईमेल का इसलिए तुरंत जवाब दिया क्योंकि उनकी नजर में उनके पत्र में कोई लाग लपेट नहीं था और वो तहे दिल से लिखा गया था।
एक चीज था जेन्युइन था, बहुत जेन्युइन था। दूसरा ये बात है कि दुख था और तीसरी अनश्योर था कि रिसेप्शन क्या होएगा हमसे फैमिली से, क्योंकि आई से इट वाज एन एक्ट ऑफ वायलेंस अग्रेशन डेथ। तो जो इनोसेंट फैमिली था उसके क्या रिएक्शन होएगा। उसने लिखा है कैसो सैन ने कि आई डिड नॉट वांट टू शूट दैट प्लेन डाउन। ये बहुत बड़ा बात है, बस वो एक चीज़ बहुत बड़ा बात है क्योंकि उसके दिल में इतना एंटी माई फादर ने थे, ये वॉर था। और उसके बाद ये 46 इयर्स लेटर क्यों हमको लिखा है ये अभी तक मेरे को, आई एम सरप्राइज्ड। और एक और चीज़ थी कि एनिमिटी है, बहुत एनिमिटी है, तो कोई उसके ऊपर मलम डाले, अगर मलम डाल सकते आपके आपके हाथ में है ना, किसी ने हमको मौका दिया तो अगर थोड़ा सा उसको रिड्यूस करे तो करना चाहिए। उसने फर्स्ट लिखा, अब मेरे चांस है, मैंने लिखूंगी कुछ डिस्टर्बिंग थी चीज़ नहीं। मैंने बोला एक मिनट के लिए भी नहीं है कि हमने सोचा है कि ये पायलट का दोष है। पायलट वॉज फाइटिंग अ वॉर, ये वॉर था और बड़े अच्छे लोग भी वॉर में बदलते हैं या have to do things which are not right, not good. तो हमने नहीं सोचा है कि पायलट की दोष है, हाँ वॉर की दोष है, यही हम सोचा है। तो मैंने लिखा ये और वी आर ओनली पॉन्स इन द गेम ऑफ वॉर। और मैंने उसको लिखा है आई होप यू फाइंड पीस।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री जोरान मिलानोविच ने कहा है कि उनका देश शरणार्थियों को हंगरी की तरफ भेजता रहेगा। उधर हंगरी ने क्रोएशिया पर आरोप लगाया है कि वह शरणार्थियों का ब्यौरा दर्ज किए बगैर उन्हें हंगरी की तरफ भेजकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि सीरिया के संकट को खत्म करने के लिए तुरंत बातचीत करने की जरूरत है। नेपाल मंत्रिमंडल ने सरोगेसी यानी किराए की कोख के चलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जापान की संसद ने एक विवादास्पद विधेयक को कानून की शक्ल देने की मंजूरी दी है और चीन ने इस पर जापान की कड़ी निंदा की है। तुर्की से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सरकारी वायुसेना के विमानों ने उत्तरी इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के कैंपों में हमला किया है जिसमें कम से कम 55 चरमपंथी मारे गए हैं। सीरिया में अलकायदा से जुड़े सीरिया के एक संगठन ने सरकारी सेना के जवानों के एक समूह को जान से मार दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि करीब 50 सैनिकों की हत्या कुछ दिनों पहले इदलिब के अबू अल दुहर हवाई अड्डे पर की गई। बीबीसी समाचार।
समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। स्टूडियो संभाला हेमंत कुशवाहा ने, मैं हूं विनीत खरे। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 9:30 बजे इंडिया बोल में।